नमस्कार दोस्तों, मोबाइल इन से परोस योगेश और हमारा आज का विषय है लैंग्विक हिंसा। साथ ही 26 नवंबर यानी संविधान की स्थापना दिवस है और वर्तमान में लैंग्विक हिंसा एक वैश्विक महामारी है, जहां लगभग 27% महिलाएं अपने जीवन काल में कभी न कभी शारीरिक या यौन उत्पीड़न का सामना करते हैं। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधि विभाग के कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट इंद्र प्रताप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके श्रोताओं को और आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी।
जी सर। सर, लैंगिक हिंसा किस प्रकार से होती है और हमारे श्रोताओं को यह समझाने का प्रयास कीजिए सर कि लैंगिक हिंसा क्या होती है।
देखिए, ऐसा है कि लैंगिक हिंसा कई प्रकार से हो सकती है। जैसे स्पर्श से लेकर के और किसी महिला का शारीरिक शोषण तक का जितना भी प्रोविजन है, जितना भी सिस्टम है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति उसको छूता भी है तो वो भी लैंगिक हिंसा में माना जाता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग महिला हो, कोई भी हो, इसमें तमाम डिफिनीशन है, परिभाषाएं हैं, उसमें आता है। और लैंगिक हिंसा पर सरकार ने समय समय पर उस पर बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं, कड़े कदम उठाए हैं और महिलाओं के को इसके शोषण से बचाने के लिए व्यवस्था के जो है कानूनों में तमाम प्रकार के संशोधन भी हुए हैं, जिसमें जो है वो बालकों के संरक्षण के लिए लैंगिक जो है वो का कानून, लैंगिक हिंसा का कानून बनाया है सरकार ने। और इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश मैं डालना चाहूंगा कि सरकार काफी हद तक इसमें सफल भी हुई है, चाहे जिस क्षेत्र की सरकार हो। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इस टाइप की चीजें हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जितनी सख्ती कानून में बरती जा रही है, इसके लिए जितना कानून सख्त होता जा रहा है, उतना ही महिलाओं के साथ जो अत्याचार की प्रकृति है, बात को हमारे समझने की कोशिश करिएगा, जो अत्याचार करने की प्रकृति है, उस प्रकृति को बहुत ही क्रूर ढंग से चेंज हो, उसमें क्रुएल्टी हो रही है, उसमें मतलब उसको जैसे अगर किसी महिला के साथ अपराध जब पहले होता था तो महिला को लोग छोड़ देते थे, लेकिन अब अगर महिला के साथ कोई अपराध होता है तो लोग महिला को ही खत्म कर देते हैं, लोग सबूत नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है और जो मेरा अपना वकालत का अनुभव है और मैं मीडिएशन सेंटर में भी बैठता हूँ, देखता हूँ, तो कानून में आई हुई जो ठीक है, महिला संगठन तमाम मुद्दे उठाते रहती हैं कि कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन जो कानून के अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जैसे जहां पर मान लीजिए अगर 7 साल का कारावास है, उस कारावास को बढ़ा करके उसकी अवधि जो है वो 14 वर्ष की कर दी गई उदाहरण के लिए, तो जिस व्यक्ति को सजा होनी है, अपराधी व्यक्ति मनोवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, उसकी मनोवृत्ति में अगर दिमाग में उसके बात है कि अभी कि हमको तो 14 साल के लिए जाना ही है, हमको तो खत्म होना ही है, लाओ इसके साथ इसको भी खत्म कर देते हैं, तो वो अब महिलाओं में अगर क्रुएल्टी हो रही है जैसे या हो रही है, तो बच्चे गायब हो जाते हैं या महिला है उसका पता लगा कि 100-2-4 दिन बाद कहीं मिल रहा है, कहीं इस टाइप की घटनाओं की प्रकृति में बढ़ी है, जो मैंने अध्ययन किया उसमें बढ़ी हुई है। इसलिए कानून होना चाहिए, नो डाउट, बट कानून अगर बहुत सख्त हो जाएगा तो सबूत नष्ट करने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं उसमें।
जी सर। सर, आज संविधान दिवस है और लैंगिक हिंसा एक बहुत बड़ी मात्रा में एक महामारी के रूप से फैल रहा है। सर, एक समाज में जन जागरण के साथ साथ जो लैंगिक समानता के भी आजकल बहुत चर्चाएं होती है, साथ ही सर विश्व बैंक द्वारा जिस तरीके से लैंगिक हिंसा को रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको जमीनी स्तर पे कितना बेहतर देखते हैं सर, साथ में जो भारत में जो कानून व्यवस्था बनी है लैंगिक हिंसा को लेकर उसको जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी देखते हैं सर?
देखिए, हम आपको जो सही बात बताएं कि मैं तो गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं है, गांव की प्राइमरी स्कूल से पढ़ा और फिर वहां से पढ़ते पढ़ते शहर में आया, शहर में आके फिर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत की, मुकदमे कुछ किए और सुप्रीम कोर्ट ने हमको मध्यस्थ नियुक्त के रूप में मान्यता भी अभी हाल ही में मतलब 1 महीने पहले पूरे मध्यस्थ अधिनियम के तहत मान्यता दी है। मैंने ये देखा है कि जो सबसे सबसे इसका खराब पहलू है यह है कि हमको जब हम सड़क पर चलते हैं तो महत्वपूर्ण सड़कों पर पोस्टर बैनर तो लगे रहते हैं कि ऐसा करने वालों के लिए इतने नंबर पर कॉल करिए, इतना करने वालों पर इतना नंबर पर कॉल करिए, लेकिन जो गांव है हमारे वहां गांव में इसका कोई हमें धरातल पर कहीं पर कोई बोर्ड कोई ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई पड़ता जिससे लोगों को शिक्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आप अगर ऐसे किसी अपराध के दोषी होते हैं तो आपको इतनी सजा हो सकती है या आपको अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो स्कूल है स्कूल लेवल पर या स्कूल स्तर पर खाली कहीं पर लिख देने से, कहीं नारा आप लिख दीजिए तो उसे नारेबाजी लिखने से उसमें तब्दीली नहीं होने वाली है, उसको आपको जमीनी हकीकत पर नीचे उतारना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो। और वो गांव में तो बिल्कुल शून्य के बराबर है, कहीं कोई बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता, आप खुद देखिए कहीं पर कहीं बोर्ड दिखाई पड़ता है कि जो है अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो आप फला नंबर पर डायल करिए, मैं अपने गांव जाता हूं तो मुझे गांव में कहीं नहीं दिखाई पड़ा तक
जी सर।
तो ये सब कागजी कार्रवाई है और इस पर तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ कि गांव में इसका प्रचार प्रसार ना के बराबर है
जी सर। सर लैंगिक हिंसा में भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा था, भारत में इसको लेकर कितना प्रभावी योजनाएं देखते सर इसको लेकर?
देखिए ऐसा है कि हम आपको बताएं कि जो हमारी सरकार केंद्र की समय चल रही है उस केंद्र सरकार का नारा ही था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसके तहत इन्होंने काफी मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहूंगा किसी पार्टी लेवल पर नहीं कि सरकार ने इस पर काम किए हैं, लेकिन लैंगिक हिंसा के मामलों में कोई सरकारें तो राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोप करती रहती हैं, अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है या कहीं पर भाजपा की सरकार है राज्य सरकार है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जितना इन मामलों में राजनीति होती है ना उतना इसका सामाजिक स्तर पर संस्कार कैसे दिया जाए उसका प्रचार उसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की जाए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक कोई दलित परिवार है, अगर उस दलित परिवार के एक साथ कोई ऐसा अत्याचार हुआ तो आप वहां पर जाकर जब राजनीतिक नेता लोग जाते हैं तो वो इस चीज को देखना भूल जाते हैं कि क्या यहाँ पर कोई इस तरीके का कोई अभियान है जो विश्व बैंक ने पैसे दिए हैं या जो सिस्टम ने दिए हैं उस उनका कहीं प्रचार प्रसार है, किलो किलोमीटर तक आप चले जाते हैं वहां पर राजनीति करने, लेकिन आप ये नहीं देखते वहां पर कि इस लेवल पर कहीं कोई प्रयास किया गया कि नहीं किया गया। जब घटना घट जाती है घटना घटने के बाद आप उसको कहते हैं कि वो दलित है वो उसको परेशान कर दिया गया या कर दिया गया, लेकिन उनको उनके उत्थान के लिए आप जो विश्व बैंक पैसे दे रहा भारत सरकार जो पैसे दे रही है राज्य सरकार पैसे दे रही है उन पैसों का कितना % उपयोग किया गया वहां पर कितना प्रचार प्रसार किया गया उसका आखिर दोषी कौन है? अगर ऐसी व्यवस्था होती तो ऐसी घटना ही नहीं घटती। कानून का भय जब नहीं आदमी को दिखाया जाएगा तो अत्याचार तो कमजोर आदमी चाहे जिस जाति का होगा जिस तरह का होगा कमजोर होगा तो उसके साथ लोग अत्याचार करते ही हैं।
सर कई आपका एक वकालत को लेकर लंबा अनुभव रहा है और कई ऐसे केसेस आए होंगे जिसको लैंगिक हिंसा को लेकर, तो सर इसमें सर क्या देखते हैं कि कोई भी एक पक्ष इससे संतुष्ट होता है तो दूसरा पक्ष असंतुष्ट होता है, सर कितना आपको सर जो पक्ष असंतुष्ट होता है उसमें कितनी गलतियां नजर आती है या जो संतुष्ट नहीं होता है या जो होता है सर क्या लगता है इसको लेकर और लैंगिक समानता को लेकर आप क्या सोचते सर?
देखिए लैंगिक समानता की जहां तक बात है सबको भागीदारी मिलनी चाहिए और जो है अगर कानून जो है तो वो सबके लिए बराबर है, बस खाली कानून को लागू करने वालों का दोष है कि वो कानून को ठीक से लागू नहीं कर पाते, जिससे लैंगिक अपराध जैसी घटनाएं घटती घट या घट गई और उसका सिस्टम होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपने आपका सवाल बहुत जायज है कि अब हम उसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि जैसे इस समय बाल अपराध जो को लेकर के जो है तमाम घटनाएं आ रही हैं, कोर्ट में मुकदमे बहुत आ रहे हैं बाल अपराध को लेकर के, कि पता लगा कि लड़की की उम्र 14 साल है, 15 साल है, लड़के की उम्र 18 साल है, 21 साल है, 22 साल है, और उसके ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट लग गया। तो ऐसे मामलों में ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर लोगों को पता लगा उनके जमीन के विवाद चल रहे हैं, जमीन के झगड़े चल रहे हैं, तो अब उन्होंने क्या किया कि साहब एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया और वो बाद में फिर सेटल्ड भी कर ले, बाद में वो सेटल्ड कर लेते हैं सारी चीजें, आदमी मजबूर हो जाता है जो उस सिस्टम में फंस जाता है, शिकंजे में कस उठता है। कहीं कहीं पर सही भी घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोग ये देखते हैं पाते हैं कि ऐसे अपराधों में न्यायालय दोष मुक्त कर देता है लोगों को, और जहां पर वास्तविक घटनाएं घट रही हैं वहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो पा रही है। जहां पर लोग प्रभावशाली लोग हैं, हमारे यही समझ में नहीं आता कि जहां पर वास्तविक रूप से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जब वो पुलिस में बार बार कंप्लेंट करती हैं, जाती हैं, वहां पर उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती, जब उनके साथ कोई बड़ी घटना घट जाती है तो पूरा अमला पहुंच जाता है, पूरा राजनीतिक लोग पहुंच जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। तो लैंगिक अपराधों में तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर वो थाने तक महिला पहुंच गई या उसके परिवार का कोई सदस्य पहुंच गया, तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए।
जी सर। सर आपके बीते सर जो अभी हाल ही में सवाल का जवाब दिया कि सेटलमेंट हो जाता है, तो यह कितना आपको सही लगता है? साथ में मेरा सवाल है कि लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए जो प्रभावी कानून है सर, तो इसके ऊपर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे ताकि जो 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 हितेशी है या जो शोषित है उनको भी एक न्याय मिल सके, सर इसके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे सर?
जी बिल्कुल देना चाहेंगे। पहला तो हमारा ये बिंदु है कि जैसे नए उम्र के लड़के लड़कियां हैं, एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और पता लगा कि उनको ये नहीं पता है कानून की, खैर कानून तो ये मान के चलता है कि कानून की जानकारी सबको है, लेकिन एक्चुअली में उनको कानून की जानकारी नहीं होती है, और वो जो है कम उम्र की लड़की और लड़का भी छोटा है और उन्होंने कोई एक साथ शादी कर ली या मैरिज कर ली, तो उस समय ये परेशानी कानून के सामने न्यायालय के सामने आ जाती है कि उनको कानून के हिसाब से चलना है। जबकि लड़की जो है अपने स्टेटमेंट में कह रही है कि साहब हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, हमारा इनसे जो है हम इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन जो उम्र की डिफिनीशन है उस उम्र की डिफिनीशन के हिसाब से वो नाबालिग है और अदालत उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि ये अभी इसकी उम्र इतनी नहीं है कि जो ये स्टेटमेंट दे रही है इसको माना जाए। और अगर उस समय लड़के की उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और उनकी शादी या मैरिज होकर के उनका परिवार सेटल किया जा सकता है, ऐसी ऐसे कानूनों पर सरकार को विचार करना चाहिए और महिला संगठनों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाने पर अंधत्वगत्वा ऐसे उसके पति को बाद में पनिशमेंट मिलता है और पनिशमेंट मिलने पर उसका परिवार बिखर जाता है। तो ऐसे मामलों पर जहां पर उम्र में कम कम गैप हो, जैसे मान लीजिए 16 साल की लड़की है और 20 साल का लड़का है, या उनपे कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य से या जो भी कह लीजिए प्राकृतिक रूप से उनके बीच में कोई स्नेह हो गया, तो उसका निदान ढूंढने के लिए कोर्ट को या अदालत को, हमारी अदालतों को उसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए और हमारी सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। जहां पर हिंसक ना हो वहां पर ऐसी चीजों से निदान निकालने में हम लोगों के बड़ी कठिनाइयां आती हैं, एज ए मीडिएटर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो कानून के खिलाफ हो जाता है, तो उसमें हम लोग मजबूर हो जाते हैं उसको अदालत में वापस भेजने के लिए।
जी सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट इंद्र प्रताप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर लैंगिक हिंसा और 26 नवंबर संविधान की स्थापना दिवस पर आज हमारे साथ जुड़कर मोबाइल वाणी पर अपने विचारों के साथ में समाज में व्याप्त लैंगिक हिंसा जो कि आज एक वैश्विक महामारी के रूप में फैलती जा रही है, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। इंद्र प्रताप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार
जी। मोबाइल वाणी से परोस योगेश, धन्यवाद।